आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।
गुड इवनिंग, आज है 24 मई, बुधवार का दिन है और दिन भर लेकर आ गया हूं मैं नितिन ठाकुर।
देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये घोषणा की, लेकिन कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने इस समारोह के बहिष्कार करने की बात कह दी है। तो विपक्ष की नाराजगी का कारण क्या है, कितना जायज है, दिन भर की शुरुआत इसी बड़ी खबर से होगी। उधर केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखा पर रोक लगा दी गई है। ये रोक किसने लगाई, फैसला कितना न्याय संगत है और दोनों पक्षों की दलील क्या है, ये सुनेंगे। राजनीतिक मुद्दे से याद आया, राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने एक नया दांव खेला है। ये दांव क्या है, कितना कामयाब होगा, ये पता करेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग की जद में आज पूरी दुनिया है, ऐसे ही चलता रहा तो देश और दुनिया के कौन कौन से इलाके हैं जहां इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिल सकता है, और इस समस्या को लेकर इंडिया को ज्यादा सतर्क क्यों होना चाहिए, ये जानेंगे। फिर आएगा भौचक, फिलहाल सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से।
शुक्रिया नितिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन, विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने किया बायकॉट का ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और उन्हें समारोह में न बुलाना सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी हैं केजरीवाल के समर्थन की बात। पंजाब में गैंगस्टर जरनैल सिंह की हत्या, मारी गई 20 से 25 गोलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए पासपोर्ट को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर, शुक्रवार को होगी सुनवाई। हेट स्पीच के मामले में बरी हुए आजम खान, इसी केस में सजा मिलने पर गई थी विधायक की। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पर पाबंदी की तैयारी, पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने भी छोड़ी पार्टी। और आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में आज मुंबई और लखनऊ की टीम आमने सामने, रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला।
यह दिन भर मैं हूं नितिन ठाकुर। देश का नया संसद भवन बनकर एकदम तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। एक साझा बयान में विपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा को नई संसद से निष्कासित कर दिया गया है और नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम से करवाने को विपक्ष जो है वो राष्ट्रपति का अपमान बता रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस दिन सावरकर की जयंती है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सामूहिक बहिष्कार पर आज ये कहा कि भारत सरकार ने सभी दलों से कार्यक्रम में शामिल होने की विनती की थी, सब लोग आए, मगर इस कार्यक्रम से विपक्ष के दूरी बनाने का फैसला कितना जायज है, ये समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से।
मैं मूलतः उसके पीछे जो कारण है मैं उसको पहले बता दूं कि आर्टिकल 53 जो है, 53(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन जो होती है उसमें लिखा गया है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम एंड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद संविधान जो भारत का है वो ये भी कहता है कि जो पार्लियामेंट है भारत की, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट, जिसके तीन हिस्से कहे जाते हैं, जिनको अगर मैं सिंपल आम आदमी के टर्म्स में बोलूं तो तीन अंग हैं पार्लियामेंट के, संसद के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरा है हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो तीन अभिन्न अंग जो हैं उसमें राष्ट्रपति जो है वो शामिल है, और एग्जीक्यूटिव और पार्टियां और ये सब चीजें हैं जो है वो उसका हिस्सा नहीं मानी जाती, वो उसके अंदर पार्लियामेंट के रूल में है। तो विपक्ष का कहना यह है कि जब राष्ट्रपति के होते हुए राष्ट्रपति को ना बुलाया जाना तो उसमें उनको क्यों नहीं शामिल किया गया, इसको लेकर के उन्होंने परेशानी जताई है कि हम जब राष्ट्रपति का हक बनता है प्रधानमंत्री उस हक को हटा रहे हैं और उसकी जगह खुद वो उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा जब का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जो पुरानी बिल्डिंग है, उसके बाद में जब बिल्डिंग का इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन ने किया था, उस समय पे कहा गया था कि ये भारत के भविष्य का निर्माण का प्रतीक होगी। लेकिन वो कोई भी ऐसी बिल्डिंग, उसमें भाषण में ड्यूक ऑफ कनॉट ने कहा था कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग अगर बनती है तो वो हमेशा हिस्सा होती है एक राजनीति का, उस देश की नीति और राजनीति का। तो लगता है कि वो राजनीति वाला एलिमेंट जो हावी हो गया है, क्योंकि अगर परेशानी सरकार की ये है कि वो इसको एक अपनी सरकार के द्वारा दिया गया गिफ्ट मानना चाहते हैं। परेशानी ये थी उनके लिए कि अगर राष्ट्रपति को बुलाया जाता तो इसका इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो तय होता है, यानी कौन किससे ऊपर है कौन उससे नीचे है, तो राष्ट्रपति देश में सबसे ऊपर है। तो अगर राष्ट्रपति मौजूद है किसी फंक्शन में तो उस जगह का इनॉग्रेशन, अनावरण या कुछ भी ऐसा होगा वो राष्ट्रपति के करकमलों से होगा, वो प्रधानमंत्री के करकमलों से नहीं होता।
राहुल जी, चूंकि आप लंबे वक्त से पत्रकारिता करते रहे हैं, इस मसले पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन होता तो क्या ये सही परंपरा होती या अभी जो हो रहा ये ठीक है?
राष्ट्रपति का पार्लियामेंट से डायरेक्ट रिश्ता है और पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव है, सरकार, वो उनके नीचे है, तो एक नजरिए से अगर देखा जाए तो उसका इनॉग्रेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए। लेकिन इस मामले में जो हुआ है कि ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं, उनके न्योता है प्रधानमंत्री को इनॉग्रेशन का, उसके प्रधानमंत्री ने उस पर हामी दी है। अब ये बात गौरतलब है कि इसमें इनॉग्रेशन के लिए राष्ट्रपति को इन्विटेशन नहीं भेजा गया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मैंने एक बात जो नोट की है अपने करीब 27 साल पार्लियामेंट कवर करने में, कि पार्लियामेंट जैसी संस्था में अगर आप कोई भी बुरी शुरुआत करते हैं तो वो प्रथा और आदत बन जाती है। और मेरे ख्याल से ये आज जो विपक्ष ये बात कह रहा है उसकी बात सही है, लेकिन क्या ऐसा विपक्ष के समय में जब वो सत्ता में थे ऐसा नहीं हुआ है? तो मैं ये कहूंगा ये गलत होगा, ऐसा हुआ है। 15 अगस्त के बाद, अगस्त 28, 1947 को जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है उसके अंदर पहली जो फोटो लगी वो लगी थी महात्मा गांधी जी की, और इस फोटो का जो पोर्ट्रेट का जो अनावरण था वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये प्रथाओं के हिसाब से ठीक था, लेकिन सेंट्रल हॉल में ही दूसरी जो पोर्ट्रेट लगाई गई वो जुलाई 28, 1956 को, इसके अनावरण के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं बुलाया गया, ना ही जो लोकसभा के स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, उनको नहीं बुलाया गया, और उसका इनॉग्रेशन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे। पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट बनने के बाद हुआ 1970 में हुआ, जो कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी साहब ने पार्लियामेंट एनेक्सी जो बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी अगस्त 3, 1970 को। लेकिन जब ये संसदीय सौध जिस बिल्डिंग जिसको कहा जाता है, इसको इनॉग्रेशन का समय आया अक्टूबर 24, 1975 में, तब इसको इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने इनॉग्रेट किया। उसके बाद अगर हम दूसरी देखें तो पार्लियामेंट में दूसरा बड़ा कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो हुआ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग का। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, और तो वो भी गलत हुआ, क्योंकि अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च है तो राष्ट्रपति को आना चाहिए था। यही कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को ना बुलाना गलत है, तो इतिहास में दर्ज है कि उनके पिताजी ने 15 अगस्त 1987 में इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन रख के गलती करी, उससे पहले इंदिरा गांधी ने अक्टूबर 24, 1975 को गलती करी। ये बुरी आदत जब शुरू कर दी गई तो देखिए आज वो ऐसी बुरी आदत आ गई है कि वही कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में उस समय ये गलत प्रथा शुरू कर रही थी आज वही उसका क्रिटिसिज्म कर रही है। तो गलत सही जो होता है डेमोक्रेसी में उसका मापदंड शायद यही होता है मेरे हिसाब से, कि हम गलत सही को तोलते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कोई भी गलत प्रथा शुरू करी जाए तो वो प्रथा रुकती नहीं है उसके बाद।
अच्छा, नई संसद भवन में एक सेंगोल या राजदंड को भी रखे जाने की बात हम आज सुबह से लगातार सुन रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री में इसके रेफरेंसेस क्या मिलते हैं?
अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा है कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर भारत एक नए भारत की को परंपरा से जोड़ा जाएगा। और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भुला दिए गए जो संगोल है उसको संसद भवन में पुनः स्थापना होगी। ये जो संगोल है इसे तमिलनाडु से आए विद्वान प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। अमित शाह जी ने आज ये बताया कि संगोल जो है वो भारतीय परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, इसका संबंध भारत के इतिहास और आजादी से है। अभी संगोल है क्या? संगोल जो है ये संस्कृत शब्द के शंकु शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है शंख। शंख जो है वो वैदिक परंपरा में पौरुष के उद्घोष का प्रतीक है। इसे राज्य विस्तार और प्रभाव व संप्रभुता से भी जोड़कर देखा जाता है। और बीजेपी के नेता जो है आज वो दबी जबान में ये बात बोल रहे हैं कि ये जो एक तरह का संगोल जो है वो राजदंड माना जाता है। और राजदंड जो है वो राजपुरोहित जो है एक समय पे राजाओं को दिया जाता था। और वैदिक परंपरा में सत्ता के दो प्रतीक होते थे, जिस तरह से एक राजदंड और दूसरा धर्म सत्ता के लिए धर्मदंड। तो इसमें जो संगोल है इसको वहां पर स्थापित करने की बात हो रही है। तो ये इसकी हिस्ट्री जो है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है भारत के इतिहास में, कि इसका सबसे पहला उपयोग जो हुआ वो मौर्य साम्राज्य में हुआ। करीब 322 और 180 ईसा पूर्व सम्राट की जो शक्ति होती थी उसके प्रतीक में तौर में इसको माना गया। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत ने भी सत्ता और साम्राज्य की संप्रभुता के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। राजगोपालाचारी जी की सलाह पर तमिलनाडु ने संगोल को मंगाया था और 14 अगस्त को की रात को अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री नेहरू को संगोल सौंपकर सत्ता का हस्तांतरण किया था। यानी जो सेंट्रल हॉल में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था उसमें संगोल का इस्तेमाल किया गया था।
जी, तो ये जो संगोल है वो 5 फीट लंबा है, चांदी का बना हुआ है, इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी है और संसद भवन में स्पीकर के पोडियम पर इसे रखा जाएगा। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। भारत का दक्षिणवर्ती राज्य है केरल, अपनी विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए खूब मशहूर है। राज्य में मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाली एक संस्था है त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड। इस संस्था ने केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखा लगाने पर बैन कर दिया है। बोर्ड ने अपने अंडर आने वाले करीब 1,250 मंदिरों को सर्कुलर जारी किया है और कहा कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन ही कराए जाएं, किसी भी राजनीतिक गतिविधि या आरएसएस की शाखा की परमिशन ना दी जाए। इस सर्कुलर में बोर्ड ने साफ किया कि आदेश का पालन ना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या देवस्वम बोर्ड के पास इस तरह के फैसले लेने का अधिकार है और लीगली स्टैंड करता है क्या? ये हमने पूछा केरल में आज तक रेडियो रिपोर्टर शिबिमोल केजी से।
सी एक्चुअली ये सेम सर्कुलर 2021 में भी इश्यू किया था ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने, सेम सर्कुलर 2 साल बाद फिर रिलीज किया है। तो हमने ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड प्रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले रिलीज इश्यू करने के बाद भी ऐसा आरएसएस की एक्टिविटीज चल रही थी ये प्रीमिसेस टेंपल प्रीमिसेस के अंदर, और ट्रावणकोर ऑफिशियल्स भी एक्शन स्ट्रिक्टली नहीं ले रहे थी। तो इसी वजह से ऑफिशियल्स को भी एक वार्निंग जैसा रिलीज किया है ये सर्कुलर। वो लोग कह रही थी कि जनवरी से, इस साल जनवरी से मार्च तक टेंपल सीजन है केरल में, और बहुत सारे फेस्टिवल्स टेंपल फेस्टिवल्स होते हैं इस सीजन में, और उस समय बहुत ज्यादा आरएसएस की ड्रिल्स और आरएसएस की एक्टिविटीज चल रहे थी बहुत सारे टेंपल्स के अंदर। और ये भी था कि बहुत सारे आरएसएस लीडर्स की पोस्टर्स भी, फोटोज पोस्टर्स भी उधर डिस्प्ले कर रही थी। तो ये सब रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है। और ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का कहना ये है कि टेंपल प्रीमिसेस बिल्कुल टेंपल रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस के लिए करनी चाहिए, और डिवोटीज को वर्शिप करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से हम ये सर्कुलर रीइश्यू कर रही है। और लीगल प्रोसीजर अगर हम देखें तो ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पास राइट है ऐसा सर्कुलर इश्यू करने के लिए, क्योंकि केरल में सारे मोस्ट टेम्पल्स ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अंडर मैनेजमेंट तो ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ही करती है। और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स शबरीमला, वडक्कुंनाथन टेम्पल इन त्रिशूर, ये सब ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अंडर आती है। तो इसी वजह से उनके पास राइट है ऐसा सर्कुलर इश्यू करने के लिए। भी आरएसएस ने रिएक्ट नहीं किया है इसके खिलाफ, और बीजेपी ने भी ये कहा कि सीपीआईएम का सीपीआईएम इंटरफेयर कर रही है, और सीपीआईएम वोट बैंक को इंप्रेस करने के लिए ऐसा ऐसा स्टेप्स ले रही है, क्योंकि ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के ऑफिशियल सीपीआईएम लीडर्स है, इसी वजह से ये सब कह रहे हैं। पर बीजेपी वालों ने ये भी कहा है कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे इसके खिलाफ।
शिबिमोल, अभी अभी जो है कर्नाटक चुनाव हमने देखा, बजरंग दल पर बैन की बात हो रही थी, कांग्रेस कर रही थी और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया था, तो क्या केरल के केस में भी ये जो हो रहा है वो बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है?
केरल में पॉलिटिकल इश्यू तो बन सकती है, बट लेकिन जैसे हमने कर्नाटका में देखा बजरंग दल बैन के लेटर, बीजेपी पूरी कैंपेन तो बजरंग दल बैन के ऊपर कर रही थी, बट ऐसा तो नहीं होगा केरल में, क्योंकि आरएसएस को बहुत ज्यादा शाखास है केरल में। एक्चुअली मेरे को लगता है पूरी देश में केरल में ही सबसे ज्यादा शाखास है आरएसएस को एक राज्य में, बट इतना पॉलिटिकल इश्यू नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने एक आरएसएस को रिएक्ट ही नहीं किया और बीजेपी ने ये भी कहा कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अंडर आती है और आरएसएस वालों को रिएक्ट करनी है, ऐसा ही कहा है। बट ये तो कहा बिल्कुल कि एक वोट बैंक, खासकर मुस्लिम वोट बैंक को इम्प्रेस करने के लिए और सिक्योर करने के लिए सीपीआईएम यू नो और लेफ्ट गवर्नमेंट मिलकर ऐसा एक कदम उठा रही है, बट ऐसा जैसे बजरंग दल बैन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उतना स्कोप नहीं है इस इश्यू को एक केरल जैसे एक राज्य में जहां बीजेपी इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कर्नाटका में तो कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक फेस टू फेस फाइट था, ऐसा नहीं है केरल में, तो इतना तो बड़ा इश्यू नहीं होगा केरल में, इतना स्कोप नहीं है उस इश्यू को।
बहुत बहुत शुक्रिया शिबिमोल। अब केरल से 2300 किलोमीटर दूर राजस्थान का रुख करते हैं। आमतौर पर आप राजस्थान को झुलसती गर्मी के लिए जानते हैं, लेकिन आज यहां ठंडी हवाएं इतरा रही हैं क्योंकि कई इलाकों में झमाझम बारिश है। बारिश की आमद के साथ ही सड़क पर चल रहे लोग छिपने के लिए एक कोना ढूंढते हैं, लेकिन जयपुर में कुछ लोगों की भीड़ बारिश से खुद को बचाते हुए राजस्थान सरकार की महंगाई राहत कैंप की तरफ बढ़ रही है। करीब एक महीने पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की थी, ये कहते हुए कि इससे गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फायदा होगा। 30 जून तक ये कैंप चलेगा। मोटा माटी इसमें 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप फ्री में जो है सारे लाभ पा सकते हैं। इन्हीं 10 लाभ में एक लाभ है केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का। राजस्थान सरकार का कहना है कि सिलेंडर महंगा हो गया है, लोग खरीद पा नहीं रहे, इसलिए राजस्थान सरकार 500 रुपये में अब जो है सिलेंडर रिफिल करने वाली है। लेकिन बात बस इतनी नहीं है, क्योंकि जिस कार्ड के जरिए सिलेंडर रिफिल होगा उस पर तस्वीर अशोक गहलोत की होगी। तो साहब, विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले केंद्र सरकार के एक प्रोग्राम को राज्य सरकार ने अपना बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया है। हमने इस तरह की पॉलिटिक्स तमिलनाडु केरल में भी देखी है, लेकिन ये राजस्थान में सरकार को कितना लाभ देगी इस पर बात करेंगे। मगर सबसे पहले इस महंगाई राहत कैंप को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैंप में उज्ज्वला सहित कौन सी 10 योजनाएं चल रही हैं, हमने पूछा राजस्थान में इंडिया टुडे मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट आनंद चौधरी से।
अभी मैंने कुछ जिलों का दौरा किया था, अभी कुछ स्टोरीज पे मैं निकला था और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था, तो वहां मैंने देखा कि हर हर व्यक्ति के हाथ में गांव में ये जो 10 योजनाओं के जो गारंटी कार्ड है उनमें से वो कितनी योजनाओं का लाभान्वित हो रहे हैं उनके कार्ड उनके हाथ में नजर आ रहे थे, लाल रंग के और पीछे केसरिया बिल्कुल एकदम रंग के कार्ड जो हैं वो उनके हाथ में नजर आ रहे थे। तो मैंने एक दो जगह उनके हाथ में वो कार्ड लेकर देखा, तो आप ये देखिए कि 10 योजनाएं हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 में से 8 योजनाएं जिनको मिल रही हैं, 8 योजनाओं के कार्ड उनके हाथ में थे। जैसे उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में जो लाभान्वित हैं उनके हाथ में जो मुख्यमंत्री जो 500 रुपए में गैस योजना है उसका कार्ड भी है। दूसरी चीज है 100 रुपए यूनिट प्रतिमा जो बिजली है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उसका कार्ड हर आदमी के हाथ में है। फिर तीसरी चीज है कि 1000 रुपए प्रतिमा पेंशन है जो सामाजिक सुरक्षा योजना की, उसके कार्ड भी लोगों के हाथ में है, ऐसे 39 लाख करीब कार्ड बन चुके हैं। फिर है आपकी कामधेनु जो पशुधन योजना, एक गाय का या एक भैंस का जो बीमा है वो किया जा रहा है मुफ्त में और उसकी अगर वो पशुधन मर जाता है तो उसके लिए 40,000 रुपए उस आदमी को दिए जाएंगे। इसके आप देखिए कि 68 लाख के करीब जो कार्ड बन चुके हैं। एक है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें देश में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा राजस्थान में हो रहा है, 25 लाख रुपए तक का इलाज है इसमें। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कहीं भी आप करवाइए, 25 लाख रुपए तक का आपका इलाज फ्री होगा जिन्होंने चिरंजीवी हेल्थ कार्ड ले रखा है। इसी में एक है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जो किसी परिवार में से किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है। इस तरह की जो स्कीम सारी है, इनके जो कार्ड बन चुके हैं लोगों के, और वो लोग इन कार्डों को लेकर लाभान्वित भी हो रहे हैं। आप ये नहीं है इन योजनाओं का फायदा आपको बाद में मिलेगा या आपको जुलाई से बाद में मिलेगा या जब शिविर खत्म हो जाएगा तब मिलेगा। इनका योजनाओं का फायदा अप्रैल से ही शुरू कर दिया गया है। कुछ बहुत सारी योजनाओं का, जैसे चिरंजीव योजना है, वो पहले से चल रही है, उसका फायदा लोगों को अप्रैल से देना शुरू कर दिया गया है। 100 रुपए यूनिट है, वो अप्रैल से शुरू कर दिया गया है। आप देखिए 2000 यूनिट जो है वो किसानों के लिए है, उसका भी ये कर दिया गया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो जनता को प्रभावित तो कर रही है। और आप देखिए कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो झगड़े के कारण राजस्थान में एक माहौल बन गया था कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वो माहौल को रोकने में बहुत हद तक ये जो आपकी महंगाई राहत कैंप है वो कारगर हुए हैं। और आप इसमें एक देखिए कि सबसे बड़ी बात, 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री राहत कैंप की जो जयपुर के पास सांगानेर के पास एक गांव में शुरुआत हुई, उसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं और करीब 20-25 जिले दो बार तीन बार उन जिलों में वो जा चुके हैं।
आनंद, ये जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से एक उज्ज्वला भी है जो केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान सरकार इसे अपना बनाकर पेश कर रही है स्टेट प्रोग्राम की तरह, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप लोगों के बीच देखते हैं क्या?
इसे आप राजस्थान सरकार का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से 5 गारंटी दी गई थी, वैसे ही राजस्थान में 10 योजनाओं को लेकर ये महंगाई राहत कैंप चलाया जा रहा है। अब तक आप इसमें देखिए कि 24 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज 24 मई का टाइम है, 1 महीने में करीब 5,64,00,000 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड इसमें बन चुके हैं, 1,21,00,000 परिवार इससे अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। एक बड़ी तादाद है 1 महीने के अंदर। आप देखिए कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, सरकार का जो उद्देश्य है या सरकार का जो लक्ष्य है वो ये है कि 3.5 से लेकर 4 करोड़ तक परिवारों तक हम इस योजनाओं के जरिए, महंगाई राहत कैंप के जरिए हम अपनी पकड़ बनाएं। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे उज्ज्वला स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है उज्ज्वला स्कीम, लेकिन आप देखिए कि उस उज्ज्वला स्कीम में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी बजट में कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे लोगों को, तो उस उज्ज्वला स्कीम में राजस्थान में 76 लाख के करीब लाभान्वित लोग हैं। उनमें से 42 लाख लोगों का जो उज्ज्वला जो कार्ड है 500 रुपए का, जो मुख्यमंत्री का जो फोटो वाला कार्ड है, वो बन चुका है। आप ये देखिए कि जो अब तक लोग जो गांव में सोच रहे थे या लोग समझ रहे थे गांव में जैसे जो आबादी है कि हमें हर चीज जैसे सिलेंडर है या स्वास्थ्य है वो केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन इन योजनाओं के जरिए अशोक गहलोत ने हर घर में अपनी पकड़ बनाई है और उन लोगों को अब लगने लगा है कि हमें केंद्र सरकार नहीं दे रही, हमें ये राज्य सरकार दे रही है, क्योंकि अशोक गहलोत के फोटो लगे कार्ड हर घर में जा रहे हैं। ये सरकार की जो प्लानिंग है पूरी, इसके जरिए ये साबित करना चाह रहे हैं सरकार, या ये का उद्देश्य है कि हर घर में मुख्यमंत्री की जब फोटो पहुंचेंगी इन 10 योजनाओं को लेकर, तो लोगों को लगेगा कि जो कुछ भी कर रही है हमारे लिए राजस्थान सरकार कर रही है, और इसको ये चुनाव में किस तरह से बुना सकेंगे, किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे तो वो इसको में तब्दील कर सकेंगे। ये सरकार का एक मुख्य लक्ष्य नजर आता है। शुरुआत जब जिस दिन हुई थी कैंपों की, उसके 2-3 दिन तक ये समाचार खबरें आती रही कि बीजेपी ने कैंपों में पहुंचकर विरोध किया। जैसे आप एक चीज देखोगे कि बारा के पास रामगंज मंडी से विधायक हैं मदन दिलावर, बीजेपी के तेज तरार विधायक हैं, उन्होंने एक कैंप में पहुंचकर लैपटॉप वगैरह के तार निकालकर फेंक दिए और वो कैंप को बंद कराने की धमकी दी, तो उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, तो उनको जनता ने ही जवाब दे दिया। जनता ने उनसे पूछा कि आप क्या हमें 1100 रुपए की जगह 500 रुपए में सिलेंडर दे दोगे, 25 लाख रुपए तक का हमारा बीमा करा दोगे, अगर आप हमें इस चीज की गारंटी दे रहे हो तो हम इस कैंप को बंद कर देंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे, आप हमें गारंटी तो दीजिए। तो इस तरह की चीजें हुई, उसके बाद में बीजेपी का विरोध जो है बहुत कम रह गया है, और खास करके महंगाई राहत कैंप को लेकर बीजेपी का ऐसा कोई प्रबल विरोध राज्य में देखने को नहीं मिला है। हाँ, बीजेपी की जन आक्रोश यात्राएं जगह जगह चल रही है, लेकिन उनमें भी जैसी स्थिति है कि उनमें वो महंगाई राहत कैंप के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहे, वो दूसरी चीजों को जैसे करप्शन को लेकर, उन चीजों को लेकर वो हमलावर हैं, लेकिन महंगाई राहत कैंप पे अभी बीजेपी पूरी तरह वेट एंड वॉच की स्थिति में।
शुक्रिया आनंद। ग्लोबल वार्मिंग एक विश्वव्यापी समस्या है, इसके चलते हमारी धरती लगातार गर्म हो रही है। रिसर्च करने वाले चेताते हैं कि अगली सदी की शुरुआत तक दुनिया की बड़ी आबादी को जानलेवा गर्मी सहनी पड़ेगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की जो कोशिशें और पॉलिसीज चल रही हैं ऐसे ही चलती रही तो इंसानी आबादी का 1/5 साल 2100 तक भीषण गर्मी की चपेट में होने वाला है। नेचर सस्टेनेबिलिटी नाम की एक जर्नल में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसमें कहा गया कि गर्मी के कारण जिन देशों के लोग सबसे ज्यादा जोखिम उठाएंगे उनमें भारत प्रमुख है। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़े जर्नलिस्ट सम्राट शर्मा ने इस रिपोर्ट को पढ़ा है और हमने उनसे ही पूछा कि देश दुनिया के कौन से वो इलाके हैं जिन्हें ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप सबसे ज्यादा झेलना पड़ेगा।
अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है वो तो रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया है, उसके बाद नाइजीरिया है, फिर इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, पाकिस्तान है, सूडान है, नाइजर है, थाईलैंड है, सऊदी अरेबिया है। तो ये सब देश हैं और ये इस पैमाने से हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो वल्नरेबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। बेशक भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं, लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हीट वेव और ग्लोबल वार्मिंग के शिकार भारत में हो सकते हैं। तो ये जगह है जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है।
अच्छा सम्राट, चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो हमें सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्या?
ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य अगर आप समझेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या असर हो सकता है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं तो सी लेवल बढ़ता है, और जैसा हम सबको पता है कि भारत तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडराता है, जो लैंड है वो सी के अंदर जा सकते हैं, और ख़ासकर जो हमारे दो द्वीप हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और वो महाराष्ट्र, वो ये जो मुंबई या गोवा वाला पूरा इलाका है, इधर उड़ीसा वाला इलाका है, तो ये सब जो है तीन तरफ से जो भारत घिरा हुआ है वो भारत को ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे तो ये तीन तरफ से समुद्र से नहीं घिरा हुआ है पर भारत है। इस बात में बेशक कोई दुविधा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत पर वो मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट ऐसा पड़ेगा, लेकिन लार्जेस्ट बोलना मुझको पर्सनली ठीक इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ है। अगर भारत के आप क्षेत्रफल को भी देखें, एरिया को देखेंगे, तो उसमें तो यूरोपियन देश तो ऐसा 14-15 देश घुस जाएंगे उसके अंदर, अफ्रीकन देश जो 4-5 देश घुस जाएंगे उसके अंदर। तो ऐसे में क्या है कि सिर्फ भारत को एक नज़र से देखना कि एक देश, एक आबादी और एक क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाती है भारत के साथ। अगर आप डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पर डेंसिटी, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अफ्रीकन देश की हालत भारत से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि अब भारत और चाइना जैसे देश हैं, इनकी जो पॉपुलेशन को अगर आप जोड़ दें तब तो देश दुनिया के 30-40 देशों की आबादी मिलाकर भी ये हो सकती है। तो ये थोड़ी ज़्यादती भारत के साथ हो जाती है क्योंकि पॉपुलेशन भी बड़ा है और क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, ये दोनों बहुत बड़े देश हैं।
तो ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगाने के लिए पूरी दुनिया को साथ आने की ज़रूरत है और कदम भी जो हैं वो तत्काल उठाए जाएं, तभी हो सकता है कि हम किसी हद तक कुछ बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सम्राट। और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट भौचक का, आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी।
बचपन में एक किस्सा सुनते थे कि एक बार एक डाकुओं का ग्रुप एक इलाके से गुजर रहा था। उन लोगों को कहीं ढोल बजने की आवाज सुनाई थी। गौर से देखा तो एक जगह पर भीड़ लगी हुई थी। रुक कर देखने लगे, पता चला कि रास्ते में एक आदमी ढोल की धुन पर करतब दिखा रहा है। वो कभी पतली रस्सी पर चलने लगता, कभी उचककर सामने वाली खिड़की पर चला जाता और वहां से छलांग लगाकर दूसरे मकान की खिड़की पर बैठ जाता। लोग तालियां बजा रहे हैं। डाकुओं के सरदार को लगा कि ये आदमी तो हमारे बहुत काम का है। उन्होंने उससे बात की और अपने गिरोह में शामिल कर ली। अब अगली रात वो लोग एक हवेली के बाहर पहुंचे। डाकुओं के सरदार ने उस करतब वाले से कहा,
वो सामने वाली खिड़की देख रहे हो जो खुली हुई है, छलांग लगाकर जाओ और खिड़की से अंदर जाकर मेन दरवाजा खोल दो, जाओ।
करतब वाला आदमी सर झुकाए खड़ा रहा। सरदार ने फिर कहा,
अरे छलांग लगाकर जाओ अंदर और खिड़की से जाकर दरवाजा खोलो, जाओ।
वो आदमी फिर भी खड़ा रहा। सरदार नाराज होकर बोला,
अरे जाता क्यों नहीं है?
वो बेचारा सर उठाकर मासूमियत से बोला,
पहले ढोल तो बजाओ।
इस किस्से में चोरी की प्लानिंग की कमी साफ दिखाई देती। ये किस्सा याद इसलिए आया क्योंकि कानपुर में भी ऐसे ही कुछ चोर पकड़ में आए हैं जिन्होंने चोरी से पहले प्लानिंग नहीं की और पकड़े गए। हुआ ये कि इसी महीने की 7 तारीख को तीन दोस्त सत्यम, अमन और अमित, जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, उन्होंने प्लान बनाया कि एक कार चुराई जाए। उन्होंने एक मारुति वैन देखी जो दबौली इलाके में खड़ी रहती थी। तीनों रेकी के बाद 7 तारीख की रात कार के पास पहुंचे और अंधेरे का फायदा उठाते हुए कार का दरवाजा खोल दिया। फिर सत्यम ने अमन से कहा,
ये लो नकली चाबी, अब जल्दी से चलाओ।
अमन ने चाबी ली और फिर वही चाबी अमित को देते हुए कहा,
अमित लो चाबी, जल्दी निकालो इसे यहां से।
अमित ने वापस अमन को देखा। अब तीनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं क्योंकि कार चलानी तीनों को नहीं आती थी। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि जब कार चलानी नहीं आती तो चोरी के बाद उसे ले कैसे जाएंगे। अब मामला यहां फंस गया। वक्त नाजुक था। आनन फानन में यह तय हुआ कि कार को ढकेल कर ले जाया जाएगा। दबोली से 10 किलोमीटर दूर कल्याणपुर तक धक्का लगाकर कार ले जाई गई। उसके बाद वो तीनों थककर वहां पर गिर गए। पसीने से तरबतर हांफते हुए बोले, अब इसके आगे तो नहीं ले जा पाएंगे भाई। लिहाजा कार को वहीं किनारे खड़ा कर दिया गया और कार की नंबर प्लेट हटा दी गई। लेकिन बीते मंगलवार को कानपुर में नजीराबाद पुलिस ने इन तीनों को धर दबोचा। SSP भेज नारायण सिंह ने कहा कि वो तीनों कार को बहुत दूर नहीं ले जा पाए थे, इसलिए जब रिपोर्ट लिखवाने के बाद छानबीन हुई तो कार मिल गई और आगे की तफ्तीश में तीनों को पकड़ लिया गया। इनमें से एक BTEC कर रहा है, एक BCOM फाइनल ईयर में है और तीसरा शख्स अमित बिल्डिंग में काम करता है। तीनों धर लिए गए। पुलिस को उनके पास से कई चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली हैं। उन्होंने बताया कि वो लोग इससे पहले सिर्फ मोटरसाइकिल ही चुराते थे, लेकिन इस बार कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश में कार चुराने की योजना बनाई थी। लेकिन ये उन्होंने नहीं सोचा था कि कार तीनों में से किसी को भी चलानी नहीं आती, यानी उनकी बोहनी ही खराब हो गई। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। और अब दिन भर में विदा लेने का वक्त। बाकी आज बुधवार है तो आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल पर बेबाक बुधवार की बैठकी लगती है, जिसमें अतरंगी अतरंगी टॉपिक होते हैं, तो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा। ठीक रात 9 बजे हम ये ट्विटर स्पेस शुरू करेंगे और आकर अपनी बात भी कहिएगा। इसके अलावा हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज बताइए। radio@aajtak.com पर। और लिखना ना चाहते हो तो बोलकर भी बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953233303। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं अमृत रज्जी। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।